यू लाइक इट। एक वजीर था जिसने अपने राजा का राज्य छीन कर उसे जंगलों में खदेड़ दिया था। अब वजीर स्वयं राजा बन बैठा था। पूर्व राजा का एक बेटा था जिसका नाम रोजा था। वजीर का भी एक बेटी थी जिसका नाम शीलिया था। रोजा और शीलिया एक दूसरे को सगी बहनों से भी बढ़कर चाहती थी। जब वजीर ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और पुराना राजा अपना वफादार साथियों के साथ जंगल की ओर भागने की तैयारी कर रहा था, तब रोजा अपनी सखी से अंतिम बार मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे के गले मिली और बचपन के दिनों को याद करके खूब रोई। तभी नई राजकुमारी यानी वजीर की बेटी इस जिद पर उतर आई कि हमारे पिताओं में चाहे कैसी भी शत्रुता क्यों ना हो, हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। उसने अपने पिता से जिद की तो पुराना राजा अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे वहीं छोड़ जंगल की ओर चला गया। एक दिन नगर में एक बांका नौजवान आया जिसकी उम्र तो अधिक ना थी, किंतु उसने नगर में आते ही दरबार के नामी पहलवानों को दंगल के लिए ललकारा। उसका सुकुमार शरीर, भोली सूरत और आंखों में दिखाई देती मासूमियत को देखकर कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसने कभी तलवार की मुठ भी पकड़कर देखी होगी, जबकि वह खूंखार पहलवानों के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अखाड़े में लोगों की बेशुमार भीड़ जमा थी और लोग उस घड़ी की कल्पना कर कर आहे भर रहे थे जब निर्दयी पहलवानों की तलवार तले उसकी गर्दन होगी। रोजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वह अखाड़े में जाकर उस युवक के हाथ से तलवार छीन ले और उसे डांट कर कहे कि उसका यह अनमोल यौवन इस प्रकार बर्बाद करने के लिए नहीं है, उसे बाज आना चाहिए ऐसी बेहुदा हरकत से। किंतु शर्म और लज्जा के कारण वह ऐसा न कर सकी। तब उसने उसके पास बैठी शामिया के कान में खरगोशी सी की, शामिया ईश्वर के लिए इसे रोक लो, रोको कि यह दंगल ना खेले। उसे हाथ में तलवार पकड़े देखकर मेरी दिल न जाने क्यों घबरा लिया। शालिया समझ गई कि क्या हो चुका है। उसकी भोली सखी उस युवक को अपना दिल दे बैठी। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो, सखी की खातिर अब तो उस युवक के प्राण बचानी होगी। यह सोचकर शीलिया ने बड़ी सहानुभूति के साथ उस युवक की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे अनुरोध किया कि वह दंगल खेलने की हट छोड़ दे। उसकी बात सुनकर युवक ने गहरी सांस लिए बोला, इन प्राणियों का मोह करके मैं क्या करूंगा राजकुमारी जी, प्राणों का। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, फिर मैं जीकर भी क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा। रोजा के हृदय में हुंकार से उठी, मेरे लिए। लेकिन हृदय की आवाज होठों तक ना आ सकी। उधर दंगल की तैयारी शुरू हो गई। तलवारें म्यानों से बाहर आकर चमचमाने लगी थी। तलवारों की झंझनाहट से पूरा अखाड़ा गूंज उठा था। तभी एक ऐसी घटना घटी कि रोजा का दिल खुशी से झूम उठा। सहसा ही अखाड़े में बिजली चमकी और बिजली की तरह तड़प कर युवक की तलवार ने विरोधियों के दो टुकड़े कर दिए। उसके कोमल हाथों की यह करामात देखकर दर्शक दंग रह गए और देखते ही देखते युवक की जय जयकार होने लगी। स्वयं मंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, हे वीर बालक, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन वह भाग्यशाली पिता है जिसने तुम जैसे वीर को जन्म दिया है। ठीक यही सवाल राजा के हृदय में भी उठ रहा था। उपस्थित दर्शक भी युवक का परिचय पाने के लिए बेकरार थे। हालांकि वहां मौजूद प्रत्येक दर्शक खुश था, लेकिन सबसे अधिक खुशी दिखाई दे रही थी रोजा। उसका हृदय भी युवक का परिचय पाने के लिए व्याकुल हो रहा था। युवक ने अपने विषय में बताना शुरू किया तो सब और सन्नाटा छा गया। महाराज, मेरा नाम ऑरलैंडो है और मेरे पिता रोलैंड किसी समय इसी राष्ट्र के प्रतिष्ठित दरबारी रह चुके हैं। उसका परिचय जानकर राजा चौंका। पूछा, क्या वही रोलैंड जो पहले वाले राजा का घनिष्ठ मित्र था। जी हाँ, वही। युवक के मुख से हाँ सुनते ही राजा को ऐसे लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां उसके हृदय पर टूट पड़ी हो। युवक को घूरते हुए राजा ने कहा, बस एनलाडो, इससे अधिक परिचय पाने की मुझे आवश्यकता नहीं। अपने शत्रु के वंशज को मैं एक पल के लिए भी जीवित नहीं रखना चाहता, किंतु तुम्हारी कच्ची उम्र और वीरता को देखकर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। राजा उसका परिचय पाकर बेहद प्रसन्न हुआ था। रोजा क्योंकि किंतु राजा की बात सुनकर वह दुखी हो उठी। यह जानकर कि वह उसके पिता के मित्र का लड़का है, उसके हृदय को बड़ा सहारा मिला था और उसने सोचा था कि वह उससे अपने दिल की हजारों बातें करेगी तथा उससे बहुत कुछ पूछेगी। किंतु जिस व्यक्ति ने रोजा के पिता को छीना था, आज वही उसके चहेते युवक को छीन रहा है। सुखी सखी की उदासी ने शेलिया को भी उदास कर दिया। वह उसी समय अपने पिता के पास पहुंची ताकि उससे कहकर इस युवक को समाधान दिलवा सके, किंतु उसके पिता ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के कारण मैंने अपनी शत्रु की बेटी को अपने घर में पनाह दे रखी है, किंतु अब वह भी यहाँ नहीं रह पाएगी। उसे कह दो कि आज सूरज डूबने से पहले मेरे राज्य की सीमा के बाहर हो जाए, और यदि मैं उसे न जाने दू तो, आहिस्ता से शीलिया ने पूछा, तो तुम भी मेरे राज्य से निकल जाओ और जाकर उसी के साथ रहो। राजा ने यह आज्ञा दे ही दी थी, किंतु उसे विश्वास नहीं था कि उसकी बेटी अपनी सखी के लिए राज्य और सुख वैभव को लात मार कर चली जाएगी। किंतु पिता की इतनी सपाट आज्ञा सुनकर उसे कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं थी। और उस दिन सूर्य की विदाई के साथ साथ वे दोनों सखियां भी राजमहल और राजधानी से विदा ले रही थी। राजकुमारियों के वश में उनका बिहड़ रास्तों और जंगलों से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। अतः लंबे लंबी होने के कारण रोजा ने पुरुष का और छोटे कद की शीलिया ने वालिन का वेश धारण किया। दोनों भाई बहन बनकर जंगल की ओर चल पड़े। इस अभियान के लिए उन्होंने अपने नाम भी बदल दिया। रोजा ने अपना नाम मर्दाना नाम यानी मिड रखा तथा शीलिया ने ए लिया। जिन राजकुमारियों ने अभी नंगी जमीन पर पांव नहीं रखा था, वह आज भूखी प्यासी बिहड़ जंगलों की खाक छान रही थी। उन्हें अपनी मंजिल का कोई इल्म न था, कहां जाएगी कुछ पता नहीं। उन्हें केवल इतना पता था कि भूतपूर्व राजा अर्थात राजा के पिता रोजा के पिता ऑर्डन नामक जंगल में अपने विश्वस्त साथियों के साथ कहीं रह रही है और शिकारियों का सजीवन व्यतीत कर रहे, किंतु वह जगह जंगल में कहां है इसकी उन्हें कोई खबर न थी। चलते चलते उनके नाजुक पांव में छाले पड़ गए। भूख प्यास से वह बेहाल हो जा रही थी, फिर भी वे दोनों चली जा रही थी। घंटों चलने के बाद वे दोनों नगर से दूर वन की सीमा के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक गड़रिये को देखा जो भेड़े चरा कर सांझ को हुए अपने घर लौट रहा था। ये दोनों सखियां थकी मांदी और भूखी प्यासी तो थी ही, अतः गैनीमेड ने आगे बढ़कर उस गड़रिये से पूछा, क्यों भाई, रात बिताने के लिए यहाँ कोई जगह मिल सकेगी? गडीरिया उन्हें किसी अन्य गांव का मेहमान समझकर अपने घर ले गया। उसने न सिर्फ उन्हें रहने की जगह दी बल्कि खूब आदर सत्कार भी किया। गडीरिया ने खाने में छाछ और बाजरे की रोटी दी जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। यदि राजमहल में वह होती तो इन चीजों का नाम सुनते ही उनके पेट में दर्द होने लगता, किंतु आज रास्ते की थकावट और भूख प्यास के कारण वही भोजन उन्हें अमृत से भी मधुर और मक्खन से भी नर्म लगा था। उसी रात उन्होंने सोचा कि साथियों की खोज करते हुए उन्हें न जाने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इसलिए बेहतर यही हो गया कि कुछ दिन यहाँ रहकर गांव की भाषा बोलचाल और तौर तरीके सीख लिए जाए, ताकि एक तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, दूसरे एकाएक ही उन्हें कोई पहचान ना सके। यह भी हो सकता है कि यहाँ रहते रहते राजा के विषय में कुछ पता चल जाए। यही सोचकर उन्होंने सुबह होते ही गडेरिया को कुछ इनाम दिया और कुछ दिन वही रहने की इच्छा जाहिर की। गडेरिया मोटा इनाम पाकर खुश हुआ और उसने उन्हें वहां रहने की सहर्ष अनुमति दे दी। वहां रहते हुए राजा को यह देखकर बेहद रोजा को हर्ष हुआ कि जगह जगह पेड़ों पर उसका नाम लिखा था, चट्टानों पर भी उसे यही देखने को मिला। कुछ पेड़ों और चट्टानों पर तो उसका नाम ले लेकर विरह गीत लिखे गए थे। उसे संदेह हो गया कि हो ना हो करतूत ओलराडो की ही है, यह करतूत ओलराडो की ही है और वह भी वही कहीं आसपास ही है। फिर एक दिन उसका यह ख्याल हकीकत में बदल गया। उस दिन उसने ओलराडो को
देखा जो रोजा रोजा पुकारता हुआ पागलों की भांति इधर उधर भटक रहा था। उसकी यह दशा देखकर रोजा के मन में आया कि वह अभी ओल्डाडो के पास जाकर कहे कि उससे विरह से, जिसके विरह से तो पागल हुए घूम रहे हो, तुम्हारी वह रोजा गैनीमेड के रूप में तुम्हारे सामने खड़ी है। किंतु वह चाहकर भी ऐसा कर ना सकी, क्योंकि अभी ऐसा करने का उचित अवसर न आया था। अतः बड़ा कठिनाई से उसने अपने व्याकुल मन को समझाया और पुरुष वेश में ही उसके पास जाकर बोली, इस बियाबान जंगल में तुम किसे पुकार रहे हो? कौन है यह रोजा? कहाँ है? ओल्डरैंडो ने सिर से पांव तक गैरीमेड को देखा। उसे लगा जैसे इस व्यक्ति को उसने पहले ही कहीं देखा, किंतु इस बात की वह कल्पना भी नहीं कर सका कि उसके प्रिय प्रेयसी रोजा ही इस समय उसके सामने खड़ी है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। रोजा मेरे दिल में रहती है। उसका प्यार देखकर रोजा का हृदय मछली की तरह तड़पा, मगर किसी प्रकार हृदय पर काबू कर वह बोली, तो वह तुम्हें हो जो पेड़ों और चट्टानों पर रोजा के विरह के गीत और गजलें कुरेदा करते हो। यदि तुम चाहो तो रोजा से मिलने को मैं तुम्हें एक उपाय बता सकती है। सुनते ओल्डाडो लगभग उछल पड़ा, बोला, तो जल्दी बताओ, कैसे देख सकता हूँ मैं अपनी रोजा को? गैनीमेड बनी रोजा ने कहा, तुम हर रोज मेरे पास मेरी कुटिया पर आया करो। हम दोनों मिलकर प्रेमी प्रेमिका का खेल खेलेंगे। तुम तो राजकुमार ओल्डेडो हो ही, मैं तुम्हारी रोजा बन जाया करूंगा। तुम मुझसे उसी प्रकार प्यार की बातें करना जैसे रोजा से करना चाहते हो। मैं भी रोजा की तरह ही तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा मन बहलाया करूंगा। हो सकता है कि इस प्रकार कभी असली रोजा से तुम्हारी भेंट हो जाए। उस समय ओल्डेडो को इस बात का कोई विशेष मतलब समझ न आया, किंतु उसे ऐसा लगा कि जैसे वह एनिमेट के बिना रह ही नहीं सकता। वह दिन दिन प्रतिदिन उससे मिलने उस कुटिया पर जाने लगा और उसे रोजा रोजा कहकर जी बहलाने लगा। उसे क्या पता था कि उसका रोजा सचमुच उसके सामने बैठी है। एक दिन जब वह रोजा से मिलने आ रहा था तो दूर से ही उसने देखा कि कोई आदमी पेड़ की छाया में गाढ़ी नींद सोया है और एक शेरनी झाड़ियों से निकलकर बिल्ली की तरह दबे पांव उसकी ओर बढ़ रही है। ओल्डरैंडो ने गौर से उस ओर सोए हुए शख्स को देखा तो पता चला कि वह उसी का सखा भाई ओलिवर है, जिसके पिता की संपत्ति पाने के लिए उसे मकान में जिंदा जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा था। जब वह इस कांड से बच निकलने के बाद में उसने उसे पहलवानों से लड़वा कर मरवाने की चेष्टा की, लेकिन तब भी किस प्रकार ओल्डरैंडो बच निकला। ओल्डरैंडो की आंखों के सामने भाई द्वारा अपने ऊपर किए गए सभी अत्याचार घूम गए, मगर यह समय अधिक सोच विचार करने का था। ओल्डरैंडो तलवार निकालकर शेरनी पर झपट गया और देखते ही देखते उसने शेरनी को दो टुकड़े कर दिया। मरने के पहले शेरनी पूरी ताकत से दहाड़ी, फिर तड़पती हुई धड़ाम से ओलिवर के पास जाकर गिरी। ओलिवर हड़बड़ा कर जागा और फिर जो कुछ उसकी आंखों ने देखा उसे देख और समझ कर उसकी आंखों से आंसू भर आए। वह अपने ही अपराधों के लिए क्षमा पाने के ख्याल से ओल्डरैंडो के कदमों में गिर गया। शेरनी ने घमासान युद्ध में ओल्डरैंडो का शरीर काफी घायल हो गया था, अतः वह गैनीमेड से मिलने उसकी कुटिया पर न जा सके। इसलिए ओलिवर के हाथों संदेश भेजकर उसने उसे वहीं बुलवा लिया। गैनीमेड बनी रोजा और ओलिया सिर्फ शीलिया और एलियो सिर्फ उस समय ओल्डरैंडो के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ओलिवर की नजरें जैसे ही एलिया से मिली वह उससे रूप सुंदर मोहित हो गया। एलिया पर भी उसे देखकर कुछ ऐसा ही असर हुआ। उसने गैनीमेड को ओल्डरैंडो को संदेश देकर अपने साथ चलने को कहा तो उसके घायल होने के बाद उसके साथ चल पड़ी। ओलिवर के पास आकर ओलिवर ने उसे बताया कि वह एलिया को पसंद करता है और उससे शादी करने का इच्छुक है। यह सुनकर ओलिवर बहुत खुश हुआ, मगर क्षण भर बाद ही उसके चेहरे पर उदासी छाई। वह बोला, काश तुम किसी दिन मेरी रोजा भी मुझे इस प्रकार मिल जाए। गैनीमेड से उसकी यह उदासी और तड़प न देखी गई। फिर भी चुटकी लेते हुए उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी रोजा नहीं हूं? ओलिवर मुस्कुरा बोला, काश मैं तुमसे अपनी असली रोजा के दर्शन कर पाता। रोजा के मन में आया कि अभी गैरीलेट का चूल्हा उतार कर अपने असली रूप में प्रकट हो जाऊं और कहूं कि लो देखो मैं ही तुम्हारी असली रोजा हूं। किंतु कुछ सोचकर उसने ऐसा ना किया और मन में असली भाव छपा कर बोली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी असली रोजा बन सकती। कैसे? चकित होकर ओलिवर ने पूछा। गैरीमेड ने उसी समय पुरुष वेश उतार कर फेंका और बोली, ऐसे। और अचानक ही अपना रोजा को सामने देखकर ओलिवर का मस्तिष्क घूम गया। उसमें समझ में न आया कि जो कुछ भी वह देख रहा है वह सपने है हकीकत। उधर ओलिवर ने अलीशा को बताया कि महाराज का ठिकाना यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जो वह उसके साथ शीघ्रता से वहां पहुंची और महाराज को वहां ले आई। महाराज की दाढ़ी बड़ी हुई थी और सिर के बाल भी काफी लंबे हो गए थे। इस रूप में भी रोजा ने उसे पहचान लिया और उसके सीने से लिपट गई। फिर उसने महाराज ओलिराडो और अन्य सभी के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर ओलिराडो की और हकीकत करके बोली, संकेत करके बोली, पिताजी ये आपके पुराने दरबारी और मित्र रोलैंडो के वीर पुत्र है और अब आपके दामाद बनना चाहते हैं। शीलिया ने बात पूरी की तो रोजा ने शर्म से नजर झुका ली। महाराज को जैसे उस युवक का परिचय प्राप्त हुआ, वह प्रसन्न हो गया। रोजा का हाथ पकड़कर उसके हाथ में देते हुए बोले, मेरे बच्चे, यह घड़ी कितनी शुभ है कि आज मैं न केवल अपनी बेटी से मिल रहा हूँ बल्कि एक योग्य युवक के हाथ में उसका हाथ भी सौंप रहा हूँ। और फिर उसी शाम रोजा और ओलिरेंडो तथा शामिया और ओलिवर का विवाह संपन्न कर दिया गया। अभी शादी का पवित्र रस्में और शपथ कार्यक्रम चल ही रहा था कि राजधानी से एक दूत आया जिसने राजा को एक पत्र प्रस्तुत किया। पत्र में लिखा था, वीर शिरोमणि महाराज इतिहास, आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जिस मोह के वशीभूत होकर मैंने आप जैसे देवता रूप राजा को उसकी प्रजा से बिछोह करा दिया, वह मोह अब मेरे हृदय से दूर हुआ। एक दिन आपकी हत्या के उद्देश्य से मैं जंगल से गुजर रहा था कि वहां एक साधु से मेरी भेंट हुई। उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। उसके ज्ञान पूर्व उपदेशों ने मेरी आंखें ही खोल दी। महाराज, अब न मुझे राज्य का मोह रहा न महल का। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी बाकी जिंदगी उसी साधु के चरणों में व्यतीत कर देना चाहता हूँ। किंतु ऐसा करने से पहले एक बार आपके चरणों पर सर रखकर आपके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। आशा है पत्र मिलते ही आप राजधानी लौटेंगे एवं अपने दास को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करेंगे। आपका सेवक। इस समाचार ने विवाह के शुभ अवसर को और ही अधिक सुखी बना दिया। सचमुच यह घड़ी भूतपूर्व राजा के लिए बड़ी शुभ थी और उसे न सिर्फ अपनी बेटी ही मिली बल्कि उसका तख्त ताज भी मिल गया था।